स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है 15 अगस्त और दिन सोमवार। अभी हो चुके हैं 6:33:44। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। भारत अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रियो ओलंपिक से। रियो ओलंपिक में कल भारत के लिए एक अहम दिन और उम्मीदों का दिन था, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी थीं जिमनास्ट दीपा कर्मकार पर। फाइनल में दीपा ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन पदक से चूक गई। वो चौथे नंबर पर रहीं। सुनिए रियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नॉरिस प्रीतम की ये रिपोर्ट।
रियो में 10 दिन बाद आज ऐसा लगा जैसे भारत भी खेलों में हिस्सा ले रहा है। और ये बदलाव लाई त्रिपुरा की 24 वर्षीय दीपा कर्माकर, जब उन्होंने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में शानदार प्रदर्शन करके चौथा स्थान प्राप्त किया। हॉल में भारतीय पत्रकारों और यहाँ आए वॉलंटियर्स ने तो दीपा के लिए भरपूर तालियां बजाई, लेकिन दुनिया भर के जिम्नास्ट और कोचों ने भी खड़े होकर दीपा का अभिवादन किया। हालांकि दीपा मेडल से चूक गई, लेकिन वो अपने प्रदर्शन से खुश थी।
मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ आज मेरा परफॉर्मेंस से, क्योंकि मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा ये 15.16। पर कोई बात नहीं, जो मेडल लिया वो सब भी मेरे से और अच्छे थे। पर मैं जितना मेरा था मैं पूरा दिया और मैं मेरे परफॉर्मेंस से खुश
हूँ। उकसाना की प्रॉब्लम है कुछ?
नहीं नहीं, देखिए ये आज फाइनल डे था, किसी जिसका दिन था वो निकल गए। पर हाँ, सब ने अच्छा देने की कोशिश किया तो मैं भी वैसे ही दिया। और जो तीन पहले उन्होंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, पर हाँ उनको मैं बहुत खुशी हो रही कि उनको मिला, क्योंकि वो लोग भी लास्ट ईयर के मेडलिस्ट थे और मैं पहला ओलंपिक है। सबने तीन तीन चार चार खेला, पर कोई बात नहीं, 2020 में हम पूरा कोशिश करेंगे, हम भी मेडल लेके जाएंगे।
दीपा को मलाल है कि कई खेलों में चौथे स्थान पर भी मेडल मिलता है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वो भविष्य में इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। हालांकि अब उनका नाम मिल्खा सिंह और पीटी उषा जैसे खिलाड़ियों के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन उनके पांव अभी जमीन पर ही हैं।
बॉक्सिंग रेसिंग में 4th प्लेस को भी ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, पर मेरे लिए मेडल के करीबी था, कोई बात नहीं। पर नेक्स्ट ईयर आई ट्राई।
तो मिल्खा सिंह और पीटी उषा की श्रेणी में?
नहीं, वो लोग तो बहुत बड़े आदमी है, हम तो बहुत छोटे हैं। बस हम कोशिश करेंगे अच्छा करने, मेडल देने की।
इससे पहले भारत की दो अन्य महिला खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी और साथ ही हॉकी में भी भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। पहले साइना नेहवाल सिंगल्स में क्वालिफाई करने से चूकी, फिर रोहन बोपन्ना के साथ मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलते हुए सानिया मिर्जा भी प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। उन्होंने माना कि रोहन और वो अच्छा नहीं खेले, लेकिन ये कहा कि खेल में ये चलता रहता है।
Not easy to lose, but also not easy to come out here and speak right now. So, yeah, we have to accept it and move on. Unfortunately, we weren't able to produce our best today, and that's sport for you, you know. And yeah, it's going to take some time to get over it, but we have to. I mean, as athletes, we do this and we have to get over losses and try and bounce back.
अब भारतीय खेमे की निगाहें मुक्केबाज विकास कृष्णन और पहलवानों पर रहेंगी। नॉरिस प्रीतम, रियो ओलंपिक्स, BBC, ब्राजील।
तो दीपा कर्मकार ने मेडल भले ही न जीता हो, लेकिन पूर्वोत्तर के एक छोटे से राज्य त्रिपुरा से आने वाली 24 साल की दीपा ने शायद रियो से लेकर भारत तक सभी का दिल जीत लिया। जैसा कि अभी आपने नॉरिस प्रीतम की रिपोर्ट में सुना कि रियो में मौजूद लोगों ने किस तरह दीपा की तारीफें की, सोशल मीडिया पर भी वो चारों तरफ सुर्खियाँ बटोर रही हैं। आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा। बता रहे हैं प्रभात पांडे।
जी इकबाल जी, दीपा कर्मकार के इवेंट के बाद से ही वो भले ही चौथे नंबर पर आई, लेकिन वो भारत में ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई हैं और तरह तरह के लोग, खास और आम सभी तरह के लोग दीपा को बधाई दे रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि दीपा कर्मकार, आप भारत का गर्व हो, आप जैसे लोग ही हम सबको अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने की प्रेरणा देते हो, आपको बहुत बहुत बधाई। वहीं क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा है कि जिम्नास्टिक, जिसके लिए भारत में मूलभूत सुविधाओं की भी बेहद कमी है, उस खेल के लिए दीपा आपने पूरे भारतवासियों को आधी रात को इकट्ठा कर लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार शेखर कपूर ने ट्वीट किया कि सवाल मेडल जीतने का नहीं है, सभी प्रचलित मान्यताओं और रीति रिवाजों को तोड़कर आगे बढ़ना और साबित करना कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, इसके लिए दीपा हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा कि दीपा, हम सबको आप पर गर्व है। हमें उम्मीद है कि आपका प्रदर्शन भविष्य में कई और युवा लड़के लड़कियों को प्रेरित करेगा। आपने सबका दिल जीत लिया। वहीं रेडिकली सिंपल नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि दीपा, आप तो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट ही हो। राजर्षि हल्दर नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि दीपा, आप किसी भी मेडल से ज्यादा चमकदार हो।
बहुत शुक्रिया प्रभात। हालांकि शोभा डे ने मैच के बाद तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मैच से पहले उन्होंने ट्विटर पर यह लिखा था कि दीपा आप जाएं, यह दिन आपका है, भारत की आज़ादी की पूर्व संध्या पर आप भारत को ये खुशखबरी दें। लेकिन हम सबको इंतजार रहेगा कि वो क्या कहती हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत आज अपना 70वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे तकरीबन 7:30 बजे। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं कश्मीर। भारत प्रशासित कश्मीर में 15 अगस्त यूं तो हर साल बंदूकों के साय में मनाया जाता है, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह किसी सरकारी रस्म की तरह प्रतीत होता है, जिसमें आम लोगों की भागीदारी नहीं के बराबर होती है। लेकिन इस बार घाटी में एक महीने से भी अधिक समय से तनाव जारी है और कर्फ्यू के मद्देनज़र हालात और भी नाजुक बने हुए हैं। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहाँ टेलीफोन लाइन से मेरे जरिए मुझसे जुड़ चुके हैं बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। रियाज, बताएं कि इस वक्त घाटी के हालात कैसे हैं?
जी, जैसे आपने खुद बताया कि यहाँ पे तो एक परंपरा है, जो 15 अगस्त है, तो पिछले जब से ये अलगाववादी आंदोलन छिड़ा है 1989 के बाद से, कोई 26-27 साल से ये परंपरा रही है कि आज के दिन तो बंद का आह्वान किया जाता है, लोग घरों में होते हैं और जो खास तौर से जहाँ पे सबसे बड़ा समारोह होता है श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम, जहाँ पे मुख्यमंत्री परेड पर सलामी लेते हैं, उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है, उस 3 टायर की सिक्योरिटी रहती है। लेकिन आज जो है वो बिल्कुल इस तरह से है कि ये कर्फ्यू में मनाया जा रहा है, जो इंडिपेंडेंस डे की जो ये का समारोह है ये बिल्कुल कर्फ्यू में होगा, यानी आज भी कर्फ्यू है और किसी तरह की कोई ढील नहीं है। हालांकि कई लोगों ने
माफ करिएगा, लगता है कि रियाज से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन्हें कार्यक्रम में दोबारा शामिल करें और अगले प्रोग्राम में भी हम रियाज के पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया सलमान से ले लेते हैं। सलमान, क्या स्वतंत्रता दिवस की पूरी तैयारी सुरक्षा को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर है?
देखिए इकबाल साहब, सबसे पहले तो बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को, आपको भी इकबाल साहब। और आज जो तोहफा जो आया है वो तो सारा दीपा कर्मकार के जो है सौजन्य पर चला गया है। और आज जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है चारों तरफ से कि जिस खेल पर चीन, जापान, रूस इसका आधिपत्य था, उनकी उस पर एक तरह से कहा जाए दादागिरी थी, उस पर एक भारतीय लड़की बिना संसाधनों के वो जाकर 4th स्थान पर फिनिश करती है, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है स्वतंत्रता दिवस का? क्या टाइमिंग थी इसकी भारतवासियों के लिए। और जहां तक बात है समारोह की, तो काफ़ी कड़े सुरक्षा के इंतजाम है। मैं भी दफ्तर आ रहा था तो दिल्ली तो बिल्कुल छावनी बनी हुई है, जगह जगह पर नाकेबंदी की हुई है, CCTV के कैमरे लगे हुए हैं। और पूरे देश में लगभग यही हाल है, क्योंकि बदले हुए हालात हैं जिस तरह से पूरे विश्व के, उसमें कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है सुरक्षा बल तो। लेकिन कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री अपना
7:30 बजे भारतीय वक्त के जी। सलमान, तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया और ले लेते हैं कि हालांकि रियाज मसरूर से हमारा श्रीनगर से संपर्क टूट गया, लेकिन बीते 4 दिनों से हम आपको श्रीनगर से ही जाने माने लेखक और पत्रकार निदा नवाज की रेडियो डायरी सुना रहे हैं, तो आज सुनिए इस डायरी की अंतिम कड़ी।
बाहर अभी गहरा अंधेरा है, सूरज अभी बर्फीले पहाड़ों की ओट में कहीं छुपा हुआ है। दूर मेरी कश्मीर घाटी के उस पार, मेरा ही देश कहलाया जाने वाला मेरा भारत स्वाधीनता और स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश भर में तिरंगा लहराया जा रहा है, रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और मैं कर्फ्यू, हड़तालों, प्रदर्शनों और पत्थरबाजियों के इस गहरे अंधेरे में सोच रहा हूँ। स्वाधीनता और स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी, हमारा अपना देश, अपना संविधान, अपने अधिकार और अपना राज। लेकिन सोच रहा हूँ, अब 70 साल हुए और क्या हम सच्ची में आज़ाद हुए हैं धार्मिक कट्टरता से, गुर्बत से, अंधविश्वास से, सांप्रदायिकता से, जातिवाद से और क्षेत्रवाद से। आज मेरे स्वतंत्र देश का ताज कहलाए जाने वाले इस क्षेत्र में, इस अटूट कहलाए जाने वाले क्षेत्र में पिछले लगभग 38 दिनों से आम लोग कर्फ्यू की कैद काट रहे हैं। आम लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। हजारों बीमार कर्फ्यू के कारण अपने ही घरों में तड़प रहे हैं। लाखों स्कूली बच्चों का भविष्य कर्फ्यू और हड़तालों की नज़र हो रहा है। ये केवल दिनों और महीनों की बात नहीं है, बल्कि पिछले लगभग 28 वर्षों से कश्मीर घाटी के आम आदमी का जीवन, उसके सपने, उसका भविष्य, उसका आत्मसम्मान, यहाँ तक कि उसकी सांसें जहादियों, धार्मिक कट्टरवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फंस चुकी हैं। आए दिन के प्रदर्शनों, एहतजाजों, कर्फ्यू पाबंदियों और आकाश को दहला देने वाले नारों ने धरती के क्षेत्र को, कभी ऋषियों और मुनियों के रहे मस्कन को, कभी विद्यापीठ कहे जाने वाले क्षेत्र को, कभी विश्व भर के लिए प्रेरणादायक रहे शांति, सौहार्द और भाईचारे की जगह को युद्ध क्षेत्र बना दिया है। यह कश्मीर घाटी पूरे महाद्वीप की राजनीति के गले में अटकी हड़ी साबित हुई है। देश के स्वतंत्रता दिवस के समारोह को समक्ष रखते हुए पिछले चंद दिनों से सुरक्षा कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है। पिछले लगभग 38 दिनों से कर्फ्यू तो है ही, लेकिन अब आम लोगों के घूमने फिरने पर ही नहीं, बल्कि उनकी सांसों पर भी पहरे बिठाए गए हैं। हर चौक और हर नुक्कड़ को रेजर वायर से बंद किया गया है। कल रात अपने एक बीमार पड़ोसी अहद सरपंच के घर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अहद सरपंच के दोनों गुर्दों ने महीनों पहले काम करना छोड़ दिया है। कुछ महीनों से डायलेटर पर है। हफ्ते में 2 दिन मेडिकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर जाना पड़ता है। अब पिछले कुछ समय से सख्त कर्फ्यू की वजह से बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा है। सोचता हूँ, मेरी इस कश्मीर घाटी में आज सरपंच जैसे हजारों गुर्दों के बीमार अस्पतालों से दूर, डायलेटरों से दूर, अपने बंद कमरों में लम्हा लम्हा मर रहे होंगे।
श्रीनगर से ये थे लेखक और पत्रकार निदा आवाज। और अब दोबारा चलते हैं श्रीनगर, जहां रियाज मसरूर से हमारा संपर्क जुड़ गया है। रियाज, हम लोग बातें कर रहे थे घाटी में हालात की, तो क्या हर बार जो 15 अगस्त के दिन घाटी में होता है और इस बार जो कि 38 दिनों से कर्फ्यू जारी, कोई फर्क है?
जी बिल्कुल फर्क है, क्योंकि पूरी तरह से कर्फ्यू का जो है, कर्फ्यू की स्थिति है और कर्फ्यू को बहुत सख्ती से इन्फोर्स किया गया है। और ये कई वर्ष बाद है, क्योंकि ये तो 90s में होता था कि कर्फ्यू के दौरान ऐसा जो है इंडिपेंडेंस डे समारोह जो है उसका आयोजन किया जाता था, तो बीच में जो है शांति जो बहाल हो गई थी उसमें तो फिर कभी कभी स्कूल के बच्चे भी उसमें समारोह में दिखाई देते थे। लेकिन आज न सिर्फ ये कि कर्फ्यू है, बल्कि जहाँ पे समारोह होना है उसके 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द की पट्टी को बिल्कुल पूरी तरह से सील कर दिया गया है।
बहुत शुक्रिया रियाज मसरूर आपका इस जानकारी के लिए, और हम आपसे अगले कार्यक्रम में भी आएंगे कुछ प्रतिक्रिया लेने के लिए। कल पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, यानी 14 अगस्त को, और इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के लोगों की नई नस्ल के एक नए जज्बे के साथ आज़ादी का झंडा उठाया है। मैं इस साल 14 अगस्त को कश्मीर की आज़ादी के नाम करता हूँ, ये कहना था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का। लेकिन अब चलते हैं गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद से शुरू हुआ दलितों का मार्च आज ऊना पहुंचकर संपन्न हो रहा है। ऊना पिछले महीने तब चर्चा में आया था जब वहां कथित गौरक्षकों ने दलितों के साथ मारपीट की थी, जिसके विरोध में पूरे राज्य में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। उसी कड़ी में ऊना में आज गुजरात और गुजरात के बाहर से भी दलित पहुंच रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुर जैन टेलीफोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उनसे पहले सुन लेते हैं कि जो ये दलित मार्च में शामिल लोग हैं वो क्या कहते हैं, खासकर 15 अगस्त और आजादी के बारे में।
मैं भावेश मकवाना, गुजरात का खेड़ा जिला मेरा वतन है। 15 अगस्त मेरे लिए इतना मायने नहीं रखती क्योंकि आजादी जब मिली तब वो अंग्रेजों की गुलामी थी इंडिया पे, और उसके बाद आजादी मिली तो जिनके पास सत्ता थी उनके पास ही आजादी गई। उनको जो वर्ग जो पहले से जमींदार था, जो पहले से पैसे वाला था, जो पहले से पावर वाला था, उनके पास ही वो सत्ता ट्रांसफॉर्म हुई है। आजादी सही अर्थ में मिली नहीं है। निजी तौर पे मैं महसूस करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं बोलता हूँ भावेश, उसके बाद में पूछते हैं कि कौन सा सरनेम, जो पूछते हैं ना वो आजादी नहीं है।
मेरा नाम सुवर्णा सालवे है, महाराष्ट्र में काम करती हूँ। आजादी मेरे लिए मायने रखती है, भारत देश में जो चल रहा है उसमें जो नारी अपने हक के लिए मांग रही है वो आजादी, जो दलित मांग रहा है आजादी, जो श्रमिक मांग रहा है, जो मुस्लिम मांग रहा है, हमारे जीवन के हर तबके में हमें हर स्टेप पे हमें एक शोषण का शिकार होना पड़ता है, तो वो शिकार हमें नहीं होना है, हमें उस शिकार होने से आजादी चाहिए।
मेरा नाम जीवन ममी है, मैं पंजाब से हूँ, और जो दलितों के लिए पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो एक खास दिन होगा कि दलितों ने गुजरात है इस स्टेट से जो एक नया संघर्ष शुरू किया है, जागा रे जागा रे जागा जागा अब तो दलित है जागा, इस तरह जो दलित समाज है पूरे भारत में जाग रहा है और एक नवा इतिहास सृजने के लिए वो आगे आ रहा है।
मेरा नाम किशोर है, विलेज राजूला, जिला अमरेली। हमारे लिए आज तक 15 अगस्त जो है वो सिर्फ स्कूलों में और राजकीय स्टंट में रहते थे, लेकिन ये पहली ऐसी 15 अगस्त है जो हम दलित पूरे गुजरात से यहाँ पे ऊना में मनाने वाले हैं। आज हमें पता चला कि 15 अगस्त जैसा भी कोई त्यौहार है, यानी तो हम हमारी मजदूरी में हमारे काम में ही रहती थी, कम 15 अगस्त आती थी जाती थी हमें पता नहीं था, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि 15 अगस्त जैसा त्यौहार भी भारत में है। यहाँ पे जो झंडा लहराएंगे पूरे गुजरात के दलित मिलकर जो झंडा लहराएंगे उससे सरकार और बैठे हुए सारे लोगों को एक सबक लेना चाहिए कि किसी भी जात को इतना नीचे मत दिखाओ कि वो अपना आपा खो बैठे और आपको बाद में पछताना पड़े। हम भी दलित है, हम भी इंसान है, हमको भी इंसान की तरह रखो, हमें क्यों जानवर की तरह रख रहे हो।
हमको भी इंसान की तरह रखो, हमें क्यों जानवर यानी जानवर की तरह रख रहे हो, ये कहना था कुछ लोग जो दलित मार्च में शामिल थे उनका। और आप सीधे चलते हैं अहमदाबाद अंकुर जैन के पास। अंकुर बताएं कि आज ये जो मार्च शुरू हुआ था आज ये खत्म हो रहा है, कैसा रहा ये पूरा मार्च दलितों का?
आप जो सब आवाज सुन रहे थे ये सभी लोग हैं जो हाल ऊना पहुंचे हैं, और मैं भी ऊना में ही जो शाह HD हाई स्कूल है जहाँ कुछ देर में इस मार्च का जो 5 तारीख को ये मार्च शुरू हुई थी अहमदाबाद से करीब 100 लोगों के साथ, अब ये मार्च कल ऊना पहुंची है और आज जो है यहाँ पे दलित समाज के लोग झंडा लहराने वाले हैं और कार्यक्रम है जिसमें कई लोग शरीक हो रहे हैं, और अभी स्कूल में ऑलरेडी लोगों का आना शुरू हो चुका है। करीबन और 8-8:30 बजे ये फंक्शन शुरू होना है जिसमें देश भारत भर से दलित एक्टिविस्ट, दलित समाज के लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। कल देर रात भी यहाँ कई सारे लोग भारत के अलग अलग कोनों से आ चुके हैं, और वहीं कुछ तनाव का भी माहौल है, सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं, 3 SRP की टुकड़ियां यहाँ ऊना में तैनात है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। और आजाद, हमें आजादी चाहिए, हमें आजाद करो, ये नारे कल पूरे दिन ऊना को में सुनाई दिए हैं, जहां ऊना पहुंच के इन्होंने एक ऊना में भी एक रैली की, और अभी लोग जो आ रहे हैं जिस प्रकार से आ रहे हैं गुजरात में जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं उसको लेकर इस कार्यक्रम पर जरूर सबकी नजर बनी हुई
तो
है।
कितनी तादाद में लोग जुट सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या बहुत भारी मजमा जमा हो सकता है वहाँ?
जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका मानना है कि करीबन 40-50 हजार लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन ये कहना मुश्किल है अभी कि कितने लोग आ पाएंगे, क्योंकि कई जगहों पर
कल रात को हिंसा की भी खबर है कि जो लोग अहमदाबाद या कई और इलाके से आ रहे थे उन्हें कहीं रोका गया है, तो देखना होगा कि कितने लोग आते हैं, पर ऑर्गेनाइजर्स का मानना है करीब 50,000 लोग जैसे आज जमा हो सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया अंकुर जैन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और अब लौटते हैं स्टूडियो की तरफ जहां जाहिर है सलमान आप इंतज़ार कर रहे होंगे। सलमान दो तीन बातें, एक तो जो घाटी के हालात की बात है 15 अगस्त को लेकर कर्फ्यू और वहां जो संगठन है उनका आह्वान जो कि रियाज मसरूर ने जिक्र किया, और गुजरात कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आप?
देखिए ये तो वाकई में इस बार जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह है उसके बीच में ये तमाम चीज़ें बीच में आ गई हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर्फ्यू के साए में कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, गुजरात में दलितों का प्रदर्शन हो रहा है, और फिर ये तो अब बीच में जैसा कि आपने बताया भी था प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के हैं उनका बयान कश्मीर के ऊपर,
उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जवाब देंगे कुछ,
बिल्कुल सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज खास है कि कल ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पाकिस्तान में जो भारतीय एम्बेसडर हैं पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि हम सप्लाईज लेकर जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर, तो भारत की तरफ से उस पर कड़ा विरोध किया गया, प्रतिक्रिया आई। विकास स्वरूप की जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि पहले ही पाकिस्तान बहुत एक्सपोर्ट कर चुका है टेररिज्म और हथियार और फेक करेंसी, इसलिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के जो मतलब नोकझोंक भी है आपस में वो भी है।
लेकिन जो दलितों के आंदोलन गुजरात में चल रहे हैं, जो कश्मीर घाटी में हो रहा है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ज़रूर उस पर भी कुछ बोलेंगे, ऐसी आशा तो की ही जा सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा इंडिकेशन इसका राष्ट्रपति का अभिभाषण
कल भी उन्होंने जिक्र किया,
तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो कमज़ोर तबके हैं उनके खिलाफ जो हमले हो रहे हैं या उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको सख्ती के साथ डील किया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ने इस बात पे भी कहा कि जो भारत की सोसाइटी का प्लूरलिज्म है वो इसकी ब्यूटी है।
बहुत शुक्रिया सलमान आपका बातों को रखने के इस तरीके से। और अब अखबारों में देख लेते हैं कि अखबार में क्या है, क्या दीपा की खबर प्रभात आ चुकी है कुछ, हालांकि देर रात ये 11:30 बजे के आसपास कुछ हुआ। जी
जी इकबाल जी, दीपा का जो इवेंट था वो भारतीय समय अनुसार काफ़ी देर रात था, तो दीपा की खबर तो अखबारों में दीपा का रिजल्ट तो नहीं आया है।
ऑनलाइन एडिशन में यकीन बहुत,
जी जी ऑनलाइन एडिशन में दीपा की खबरें हैं और दीपा को लेकर सोशल मीडिया पे जिस तरह से उन्हें
जो कि आपने जिक्र किया
जी सराहा जा रहा है वो खबरें हैं। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जैसे कि अभी सलमान जी बता रहे थे, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो बयानबाजी हुई उसको अपनी पहली खबर बनाया है, जिसमें भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि हम इस दिन को कश्मीर की आज़ादी के नाम करना चाहते हैं और कश्मीर के लोगों का बलिदान खराब नहीं जाएगा, जिसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सहित इस उपमहाद्वीप के कई देश पहले ही पाकिस्तान से निर्यात किया हुआ आतंकवाद झेल चुके हैं, अब वो और इस तरह का आतंकवाद झेलने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया में ही भारत सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए खबर छपी है कि भारत के बड़े शहर भले ही ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन सच ये है कि अभी भी 90% भारतीयों के पास अपना खुद का वाहन नहीं है। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था उसको प्रमुखता दी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दलितों और अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों से सख्ती से निपटना चाहिए और देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसमें कमज़ोर तबके की भागीदारी हो। इसके अलावा नई दुनिया में खबर छपी है कि सुरक्षा के साए में दिल्ली स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। द हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी खबर छापी है पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत प्रशासित कश्मीर के कई हिस्सों में पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की खबरें हैं। जी इकबाल,
एक और खबर है जो आप बता दीजिए अपने श्रोताओं को कि वो जो कुत्ते को इस बार बहादुरी का पुरस्कार मिला है।
जी सलमान जी, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं चाहूंगा कि आप ही हमारे श्रोताओं को।
भाई इस बार जो है एक जो आर्मी का लैब्राडोर है, मानसी उसका नाम है, और उनके जो हैंडलर थे बशीर अहमद वर, तो उत्तरी कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे, और इस बार जो है पुरस्कृत किया गया है दोनों को, मानसी को भी और दर को, वर को भी।
बहुत शुक्रिया सलमान। और अब वक्त हो चला है प्रमुख समाचारों का, लेकिन अपने श्रोताओं को मैं ज़रूर ये बता दूं कि हमने त्रिपुरा की दीपा कर्मकार का जिक्र किया, लेकिन पूर्वोत्तर के एक और राज्य मणिपुर की इरोम शर्मिला के बारे में हम एक खास रिपोर्ट सुनवाएंगे आपको अगले कार्यक्रम में, और ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे तो वो अपने भाषण में क्या कहते हैं। और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत की जिमनास्ट दीपा कर्मकार बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद रियो ओलंपिक में पदक हासिल करने से चूक गई हैं। वो वॉल्ट इवेंट के फाइनल में 4th नंबर पर रहीं। रियो ओलंपिक में ही पुरुषों की 100 मीटर दौड़ जमैका के यूसेन बोल्ट ने जीत ली है। उन्होंने 9.81 सेकेंड का वक्त निकालकर स्वर्ण पदक हासिल किया। ब्रिटेन के एंडी मरे ने पुरुष सिंगल्स टेनिस का स्वर्ण पदक जीत लिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि दलितों और अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को सख्ती से निपटना चाहिए। ब्रिटेन स्थित सीरिया में मानवाधिकारों की निगरानी संस्था ने दावा किया है कि इदलिब प्रांत में हुए एक विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
बहुत शुक्रिया प्रभात। और उसैन बोल्ट और जीत तो जैसे दोनों एक ही शब्द हो गए हैं। तो बहरहाल नमस्कार भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक 1 घंटे बाद विश्व भारती में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त अपने तमाम साथियों के साथ। नमस्कार।